धरती गगन सभी मिल जाते होके यही मगन, धरती गगन सभी मिल जाते होके यही मगन। दिया है बाबा हमको नया जीवन।
ओम शांति। जीवन हम सभी आत्माओं को मिला है, जैसे बाबा कहते हैं 600-650 करोड़ आत्माएं, हर एक को जीवन मिला है। मनुष्य जीवन को लौकिक अर्थ में भी वैल्यूएबल जीवन कहते हैं। सर्व प्राणियों में श्रेष्ठ सामाजिक बौद्धिक प्राणी इंसान को कहा जाता है, इसलिए एक मनुष्य होने के नाते भी इस संसार के अंदर हम सर्व प्राणियों में श्रेष्ठ प्राणी हैं। एक मानव होने के नाते अगर हम सोचते हैं तो मनुष्य जीवन हम अनेक अनेक आत्माओं को मिला है। संसार में रोज लाखों आते हैं, जीवन प्राप्त करते हैं और रोज लाखों जाते हैं। समाज उसे श्रेष्ठ कहता है जो इस दुनिया से श्रेष्ठ लेकर जाते हैं और इस दुनिया को श्रेष्ठ देकर जाते हैं। लोग उसे याद करते हैं, इसलिए कहते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो खुद रोता है और जग हंसता है, खुशी मनाता है। जीवन ऐसा जीकर जाओ जो खुद हंसते हंसते जाए और संसार हमें याद करके रोए, आंसू बहाए। इसलिए इस मानव समाज के अंदर हमारे इस मानव जीवन की सार्थकता तब है जब हम अपने को ऊंचा उठाएं, इंसान बनकर जिए और इंसान से भी ऊंचे बने और समाज के लिए भी कुछ अच्छा करें। जीवन जीने की 3 पद्धति बताते हैं। एक है टू लीव, जियो। मनुष्य खाता है, पीता है और जीता है, वो अपनी ही सोचता है, औरों के लिए नहीं सोचता है। इससे ऊंची जीवन पद्धति है कि जियो और जीने दो, खुद भी जिए, दूसरे भी जिए। ये इंसानियत का हजत। केवल स्व केंद्रीय न बने, केवल अपने स्वार्थ को न देखें, केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए न सोचे, लेकिन दूसरों का भी ख्याल कर। ये नहीं कि हमें किसकी परवाह नहीं है, हु केयर्स, हमें क्या है, नहीं। जो औरों के लिए भी केयर करते हैं, उनको भी जीने देते हैं। लेकिन सबसे ऊंची जीवन पद्धति है लिव फॉर अदर्स, दूसरों के लिए जी, दूसरों के लिए जी। इसलिए लौकिक दृष्टि से भी जीवन की सार्थकता इसमें मानी जाती है कि हम अन्य के लिए जिए, अर्थात हमारा जीवन अन्य के उपयोग में आए, अन्य के कल्याण करने में आए। इसलिए एक बात तो हमें यह स्पष्ट हो गई कि इस संसार में हम केवल खाने पीने और सोने के लिए नहीं आए हैं। संस्कृत में एक श्लोक आता है और उसमें कहते हैं कि आहार निंद्रा भय मैथुन सामान्य एतत् पशुमानवो हो। पशु और मानव में ये सामान्य है, खाना पीना सोना। मानव जीवन की विशेषता है, उन्होंने शब्दों में, धर्म ही जीवन की विशेषता है। इसलिए वो कहते हैं धर्मे विहीना पशुहु समाना। जिसके जीवन में धर्म नहीं है, मीन्स स्वधर्म नहीं है, श्रेष्ठ धारणाएं नहीं है, वो जीवन पशु तुल्य जीवन है। इसलिए जिन्हों में ये धारणाएं नहीं है, श्रेष्ठताएं नहीं है, उस जीवन के लिए वे कहते हैं कि ये पशु से भी बदतर है। तो एक इंसान के नाते भी हमारे विवेक में ये स्पष्ट हो कि केवल खाना पीना सोना जीवन नहीं है। हम इस दुनिया में केवल इसके लिए नहीं आए हैं, ये हमारा रूटीन है, इट इज कॉमन। एक फिजिकल एग्जिस्टेंस के लिए अपने शारीरिक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इट इज रूटीन कि रोज खाना है, रोज पीना है, रोज सोना है। मैं ज्ञान की बात नहीं कर रही, लेकिन एक इंसान के नाते भी हमारे जीवन में ये स्पष्ट है। अगर इतना विवेक हमारे अंदर स्पष्ट है तो हम जीवन को ऊंचा उठाने का लक्ष्य रखेंगे। ये भी जीवन की वास्तविकता हम सभी देख रहे हैं कि व्यक्ति एक सामान्य मानव जीवन से ऊंचा उठता है विशेष गुणों के आधार से, विशेष धारणाओं के आधार से, केवल भौतिकता के आधार से नहीं। भल दुनिया में सही ज्ञान नहीं है, वे माध्यम भौतिकता को बनाते, समझो कोई धन साधन से ऊंचे उठते हैं, कोई शारीरिक सौंदर्य से ऊंचे उठते हैं, कोई दुनिया की पद प्रतिष्ठा की दृष्टि से ऊंचे उठते हैं, कोई दुनियावी ज्ञान और पढ़ाई के हिसाब से ऊंचे उठते हैं, लेकिन इन सब सांसारिक सिद्धियां ऊंचाइयां भी वो ही प्राप्त करता है जिनके अंदर गुण है। कौन से गुण हैं? चाहे वे पूरे एकाग्रता से उस लक्ष्य में लगते, पूरी मेहनत उस दिशा में करते हैं, बिगर मेहनत कोई धनवान नहीं बनता है। भल वो मेहनत सही नहीं हो, उल्टे सीधे प्रपंच के धंधे करने हो, लेकिन उसमें भी मेहनत जरूर करते। अल्टीमेट गुण जो है वो ही उसे ऊंचा उठाते हैं। ज्ञान सही नहीं है, इसलिए मार्ग दिशा साधन सही नहीं अपनाते हैं, लेकिन व्यक्ति जीवन में अचीव करता है गुणों से, परिश्रम से, एकाग्रता से। ये हमें क्लियर होना चाहिए। आज शारीरिक सौंदर्य की दृष्टि से भी अगर कोई स्थान प्राप्त करते हैं और उनसे अगर आप पूछेंगे तो उनका भी कॉन्सेंट्रेशन होता है शरीर के प्रति, स्वस्थता के प्रति, सौंदर्य के प्रति। उसके लिए वो मेहनत करते हैं, नॉलेज प्राप्त करते हैं, ऐसे नहीं बन जाते। इसलिए लौकिक जगत में भी आगे बढ़ने वाले अपने अपने क्षेत्र में ऊंचे उठने वाले मूल रीति इन गुणों से ही ऊंचे उठते हैं, परिश्रम से ऊंचे उठते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रता से ऊंचे उठते हैं। और उसके लिए वे भी उस लक्ष्य के संदर्भ में जो त्याग चाहिए वो करते हैं, जो बहुत सुंदर गाते हैं, सुरीली आवाज है, आप उनसे पूछो, कई प्रकार की चीजें वो नहीं खाते, ध्यान रखते हैं। जो ये मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड बनते हैं, आप उनसे पूछो, वे अपने खाने पीने सोने में एक्सरसाइज करने में दिनचर्या में कितनी बातों का ख्याल रखते। हमें इन बातों को सूक्ष्मता से सोचना चाहिए। और वो ये कि कोई भी सफलता, कोई भी सिद्धि, कोई भी अचीवमेंट बेसिकली ज्ञान गुण शक्ति पुरुषार्थ से ही मिलती है। उनका वो संसार है, उनका वो लक्ष्य है, उनकी वो जानकारी है, इसलिए वे उस फील्ड में आगे आते हैं। इसलिए हम तो कितने भाग्यशाली आत्माएं हैं जिनको भगवान ने सही ज्ञान दिया है। मैं हमेशा सोचती हूं कि सारा संसार भटक रहा है केवल एक ही कारण से कि सही ज्ञान नहीं, सच्ची समझ नहीं है। इसलिए जीवन को योग्य दिशा और योग्य लक्ष्य वो नहीं दे पाते, वरना वे भी मेहनत करते हैं, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि वे आत्मबल से ऊपर उठते हैं। हमारी तरह उनके पीछे भगवान का बल नहीं है, क्योंकि उनका भगवान से योग नहीं है, ना वे भगवान को जानते हैं। वे स्वयं के बल से आगे आते, लेकिन एक सही ज्ञान न होने के कारण जो वो जानते हैं उसमें ऊंचे उठते। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें स्वयं भगवान खुद ही आकर सारे ही सत्य बताते हैं, जीवन के सभी राज हमें स्पष्ट है। जीवन का ऐसा कोई एस्पेक्ट नहीं है जिस पर बाबा ने प्रकाश न डाला हो। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस ज्ञान को इतनी गहराई से स्टडी करें जो सारी समझ हमारी बुद्धि में स्पष्ट हो जाए। हम नहीं जानते हैं, हमारा गुनाह है, क्योंकि बाबा सब कुछ बता रहे हैं। लोगों के पास जो कुछ जानकारी है उस जानकारी के आधार पर उनके मन में जो विचार रहे, उनको तो इतना भी विवेक नहीं है कि ये विचार सही है या गलत है ये सोचे। हमें सत्य विचार जीवन के बारे में और इस जगत के बारे में खुद भगवान रोज समझाते हैं। इसलिए हमारे लिए मूंझने की कोई बात नहीं। सत्य सदा स्पष्ट होता है, सत्य सदा सरल होता है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं। इवन आप सोचिए, बेचारे भक्त भगवान से कितनी लगन है। हम कई बार सोचते हैं, अपने आप को देखते हैं कि क्या हमें मीरा जैसी लगन है। भल वो भक्तिन थी, लेकिन हमें उनके जैसी लगन है भगवान के लिए। उन्होंने लगन है, भक्त को भगवान के प्रति है, वैज्ञानिकों को अपने विज्ञान के प्रति है, हर क्षेत्र वालों को जिन्होंने सिद्धि पाई है, सफलता पाई है, टॉप सिद्ध किया है, वे अपनी लगन से आगे बढ़े हैं ना। तो लगन है मीन्स इच्छा तीव्र है कि भी मुझे भगवान को पाना है, मुझे धनवान बनना है, मुझे नंबर वन विन करना है, मुझे ये रिसर्च करके रहना है, जो जिस भी क्षेत्र में है उनको तीव्र इच्छा है, लगन है, अथक परिश्रम है, कितना कष्ट सहते हैं, कितने व्रत उपवास साधना करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, चाहे अपनी गृहस्थी में लगे रहते हैं, चाहे अपने धंधे में लगे रहते हैं, चाहे देह को संवारने में लगे रहते हैं, लेकिन लगे रहते हैं। इसलिए इच्छा है, पुरुषार्थ है, केवल एक बात नहीं है, सही ज्ञान नहीं है। सही ज्ञान नहीं है। इसलिए इच्छा होते हुए, मेहनत होते हुए उतरती कला में ही जा रहे हैं, अपने आप में संतुष्ट नहीं है, बल सक्सेसफुल हो जाते हैं लेकिन आंतरिक फुलफिलमेंट नहीं है, अंदर की संतुष्टता और उसके फल स्वरूप जीवन की प्रसन्नता नहीं है। और अगर है तो वो लिमिटेड क्षेत्र में है। बाबा ने हमें सही ज्ञान दिया है, जीवन के हर बात स्पष्ट कर दी है, हमें किसी से पूछने की, वेरीफाई कराने की, खुद कोई जज करने की जरूरत नहीं है। अगर ये निश्चय है कि भगवान ज्ञान देते हैं तो, और मैं समझती हूं कि आप इतने बरसों से ज्ञान में चलते हैं और यहां तक भट्टी में आए हैं तो ये बेसिक निश्चय तो होगा ही, है ना? माने हमें समझ स्पष्ट है, दिशा स्पष्ट है, समय का सिग्नल क्लियर है कि समय कौन सा चल रहा है। अगर समय का सिग्नल भी स्पष्ट ना हो तो चलो हम जीवन के दो चार लक्ष्य रख ले, लेकिन हमें समय का सिग्नल भी स्पष्ट कि यही विश्व परिवर्तन का समय है, यही डायरेक्ट भगवान के प्रति कुछ करने का समय है। और किसी के लिए हम कुछ करना चाहते हैं उसके लिए और भी मौके हैं। ड्रामा में 84 जन्म है, और कोई जन्म में भी हम उन आत्माओं के लिए कुछ कर सकते हैं। जीवन के भौतिक, लौकिक, सांसारिक, दैहिक लक्ष्यों को सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन सारे चक्र में केवल अभी एक ही बार ये मौका है भगवान के लिए कुछ करने का। बात समझ में आई कि अगर हम और किसी से लिए के लिए कुछ करना चाहते हैं, मरना चाहते हैं, उससे प्यार करना चाहते हैं, उसका ऋण चुकाना चाहते हैं, और जो भी देहधारी है उनके लिए हमें कुछ करना है तो और भी अनेक जन्म के मौके हैं। जीवन के और एस्पेक्ट जो मैंने बताए, चाहे वो भौतिक, दैहिक, सांसारिक, लौकिक और जो भी एस्पेक्ट है, उसमें सिद्धि सफलता प्राप्त करने के मौके और भी जन्म में हमें हैं। लेकिन आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठने का, अपने आत्म कल्याण का, भगवान के प्रति कुर्बान होने का केवल अभी एक ही मौका है। इसलिए हम प्रायोरिटी इसको देंगे भाई 10 इम्पोर्टेंट काम आपको करने हैं, ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट, सब कुछ इम्पोर्टेंट है भाई। मुझे करियर भी बनाना है, मुझे रिलेशन भी संभालने हैं, मुझे पढ़ना भी अच्छा है, मुझे फिजिकल पर्सनालिटी भी बनानी, मुझे मेरे सामने 10 इम्पोर्टेंट वर्क है। लेकिन इस 10 इम्पोर्टेंट वर्क में मोस्ट अर्जेंट कौन सा है, मोस्ट अर्जेंट कौन सा है, उसको पहले करेंगे ना। ये है समय का सिग्नल, इसको कहते हैं समय की अवेयरनेस। कि अभी समय कौन सा है, किस बात की सीजन है, वो हमें कर लेना। और तीनों रीति से ऊंचा उठने का और कुछ करने का यही समय। एक है स्वयं के लिए, अगर मुझे आत्म शुद्धि करनी है, आत्म उन्नति करनी है, आत्म कल्याण करना है, स्वयं को ऊंचाई पर पहुंचाना है आत्मिक रूप से, निजी गुणों की दृष्टि से, उसका भी यही समय है। अगर मुझे अन्य के लिए कुछ करना है, अन्य में सब आ जाते हैं, मेरे मित्र, संबंधी, सगे, वाहले, संसार, समग्र विश्व, मुझे अन्य के लिए कुछ करना है, चाहे मनुष्यों के लिए करना है, पशु पंछियों के लिए करना है, प्रकृति जगत के लिए करना, उसका भी यही समय है। क्योंकि हम जानते हैं कि स्वयं में महानता होगी तो हम अन्य को कुछ दे सकेंगे। हम खुद ही स्थित नहीं है, अपने आप में नहीं है, स्वयं में वो शक्ति, गुण और ज्ञान नहीं है, तो हमारी कितनी भी भावना हो, प्यार हो, हम अन्य के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। माँ बाप को भावना है कि बच्चा पढ़कर नंबर 1 बने, लेकिन सिर्फ भावना से थोड़ी बन जाएगा, उसे वो साधन देने पड़ेंगे, वो सुविधाएं देनी पड़ेगी, और उसके अंदर अपनी हैसियत चाहिए, तब तो आएगा फर्स्ट, ऐसे कैसे आएगा। भावना है, साधन भी है, सुविधाएं भी दे देते हैं, लेकिन स्वयं में ही नहीं दम है तो आ सकेगा नंबर 1। इसलिए हम इस बेसिक बात को भी समझ चुके हैं कि स्वयं में वो गुण, योग्यता, लायकात, वो शक्ति, समझ होगी तो हम अन्य के कल्याण का कार्य कर सकेंगे। और तीसरी बात कि मुझे भगवान के लिए कुछ करना, तीन ही तो चीजें हैं, मैं हूं, ये दुनिया है और वो है। अगर मुझे उस परमात्मा के लिए करना है कुछ, तो उसके लिए भी यही समय है, क्योंकि अभी ही वो सन्मुख आते हैं, और न केवल वो स्वयं आते हैं बल्कि वो हमारा सहयोग मांगते हैं। और वो कौन सा सहयोग, हमारे श्रेष्ठ जीवन का, हमारे श्रेष्ठ जीवन का, जो दादी ने सरल शब्दों में आज सुबह कहा कि वो जो कहते हैं वो हम करें, बस सीधी सी बात है। इतना सहयोग उसे चाहिए और ये हमें निश्चय है विवेक पूर्ण रीति से कि वो जो कहेंगे वो सत्य ही कहेंगे, कल्याणकारी ही कहेंगे, आवश्यक है इसलिए ही कहेंगे, बिगर मतलब की अनावश्यक उल्टी सीधी बात तो वो नहीं कहते हैं ना। इसलिए जीवन हो तो ऐसा श्रेष्ठ हो जो हमें महसूस हो कि मेरा इस संसार में आना सार्थक है, उपयोगी है। सिर्फ खाया पिया मौज किया ये जीवन नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि यही तो आयु है खाने पीने और मौज करने, अभी तो हम करेंगे ना, और ये सोचकर जब हम कुछ कर सकते हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, जब हम सक्षम हैं, समृद्ध हैं, कुछ कर सकते हैं, तब हम समय वेस्ट करते हैं, तब हम समय वेस्ट करते हैं खाने पीने मौज करने में। ये सोच के कि अभी ही तो हम खाएंगे, बूढ़े होंगे फिर थोड़ी खाएंगे, अभी ही तो हम मौज मस्ती कर सकते हैं, तूफान तो युवाई करेंगे ना और थोड़ी करेंगे, बूढ़े करेंगे क्या, खेलेंगे खाएंगे क्या, हम ये सोचते। लेकिन मैं ये सोचती हूं कि जब हम कर सकते हैं फिजिकली मेंटली, जब हमारे में शक्ति है, समृद्धि है, तब हम ऐसा सोच के टाइम वेस्ट करते हैं, एनर्जी वेस्ट करते हैं। जीवन की एंजॉयमेंट इसको नहीं कहते। एक सुअर को भी गंदगी में मजा आता है, वो मजा नहीं है। हमें गंदे साधनों से, गंदी चीजों से, गंदी विधियों से एंजॉयमेंट नहीं करना है। हमें विवेक पूर्ण आनंद चाहिए, सही आनंद जीवन की ऊंचाइयों में है, न कि इंद्रिय के रसों में। सत्यता तो ये है कि हम भोगों को भोग कर, स्वादों में जाकर इंद्रिय रसों में रहकर हम स्वयं अपने शारीरिक और मानसिक क्षमता को खर्च कर हम खुद ही युवा से बूढ़े बनते हैं। रियलिटी तो ये है, रिजल्ट तो ये आता है। और जब व्यक्ति बूढ़ा बन जाता है, लोग कहते हैं अब भगवान को याद करने का समय है, उस समय उनका मन तैयार नहीं है, क्योंकि जीवन भर भौतिक दैहिक इंद्रिय सुखों को भोग कर वो अपने मन को बिखेर चुका होता है। इसलिए जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते, क्योंकि जब करना चाहिए था तब किया नहीं। इसलिए कई ऐसे गलत कंसेप्ट, कई गलत बिलीफ्स हमारे मन में होती है, और इसलिए हम स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के बजाय अपना समय शक्ति बर्बाद करते रहते हैं। जब शक्ति है लेकिन मैच्योरिटी नहीं है तो वेस्टेज होता है। यही आयु है। जब हमारे में शक्ति है, समर्थी है, उमंग है, उत्साह है, आशा है, अरमान है, लेकिन जीवन के लक्ष्य की परिपक्वता नहीं है, तो शक्ति होते हुए मैच्योरिटी नहीं है, इसलिए एनर्जी वेस्ट होती है। हम एंजॉयमेंट के नाम पर अपनी अयोग्य इच्छाओं को, मन की गलत वासनाओं को, गलत रसों को, अलबेलापन को, लापरवाही को पोसते रहते हैं। टाइम तो पास हो जाएगा लेकिन अचीवमेंट श्रेष्ठता की नहीं कर पाएंगे। सत्य को ही परखना है, वो अभी परखो या बाद में परखो, लेकिन अभी परखेंगे और उस दिशा में हम जीवन को लगाएंगे तो हमें अंदर से संतुष्टता होगी कि मैंने अपने जीवन को सफल किया है। और इसलिए जब नहीं कर सकेंगे उस एज में, जब शरीर से हम बूढ़े हो जाते हैं, वो शक्ति नहीं रहती है, जितना चाहिए उतना हम नहीं कर पाएंगे फिजिकली, उस समय हमें अपने अंदर ग्लानि नहीं रहेगी, अंदर से दिल खाएगा नहीं हमें। और मैंने ये देखा है कि जो ज्ञान में युवा भाई बहने हैं, अगर वे अलबेले हैं अपने श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य के प्रति, लौकिक लक्ष्य रहा नहीं, इसलिए उस क्षेत्र में सिद्धि पाते नहीं, क्योंकि वो लक्ष्य, वो क्षेत्र से आप इस तरफ आ गए। जिनको ज्ञान नहीं है वे तो लौकिक में तो सिद्धि पा रहे हैं, वहां तो ऊंचे उठ रहे हैं, लेकिन सही ज्ञान मिलने के बाद नेचुरली वो लक्ष्य हमारा नहीं रहेगा। लेकिन इस लक्ष्य के प्रति भी एकाग्र नहीं है, पूरे इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, इसलिए ये भी नहीं पाते, ना उसमें कुछ कर दिखाया ना यहां कुछ कर दिखाया। क्योंकि कुछ भी कर दिखाने के लिए मेहनत चाहिए, त्याग चाहिए, वो करना नहीं चाहते हैं और नाम लेंगे ज्ञान का कि हम ज्ञान में चलते हैं इसलिए इतना पढ़ना नहीं चाहते। ठीक है, ऊपर की रीति से वो निर्णय ठीक है, लेकिन यहां भी तो नहीं पढ़ रहे हो, यहां भी तो कुछ नहीं कर रहे हो, मीन्स इंटरनली तो अलबेलापन है, कुछ मेहनत नहीं करना चाहते हो। जैसे कई शादी नहीं करना चाहते हैं, मैंने कई बार नोटिस किया है कि वे इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि उनको विकारों से वैराग्य, वे इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि वे कोई जिम्मेवारी में बंधना नहीं चाहते। बहुत सूक्ष्मता से मैं कह रही हूं, होता है अलबेलापन, मरना नहीं चाहते हैं, सहन करना नहीं चाहते हैं, एडजस्ट करना नहीं चाहते हैं, घर परिवार के लिए त्याग करना नहीं चाहते हैं, बात तो वो है। और अगर मुझे सही ज्ञान स्पष्ट है और मुझे सचमुच अंदर से विकारों से वैराग्य है तो मेरा योग बाबा से शक्तिशाली होना चाहिए, तो मैं इस योगी जीवन में सिंसियर होनी चाहिए, तो मैं इस श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य को पाने में तीव्र पुरुषार्थी होनी चाहिए। अगर हम इसमें ऐसे नहीं है तो सिद्ध करता है कि हम अलबेले हैं, लापरवाह हैं, हमें ज्ञान की गहराई नहीं है, हमने कोई लक्ष्य निश्चित किया नहीं है, हम तो हर प्रकार की जिम्मेवारी से दूर रह के खा पी के मौज करना चाहते, पर मेरी तैयारी ये है कि मैं पूरा लगने के लिए तैयार हूं, त्याग करने तैयार हूं, मेहनत करने तैयार हूं, सिंसियरिटी से काम करने तैयार हूं, तो मैं जिस भी क्षेत्र में जाऊंगी सफलता पाऊंगी। फिर तो आपकी बात है कि आप कौन सी दिशा चुनते हैं, तैयारी है। हमने देखा है कि हमारी तैयारी नहीं है, हम सहन करना नहीं चाहते हैं, मरना नहीं चाहते हैं, एडजस्ट करना नहीं चाहते हैं, हम कोई एक लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहना नहीं चाहते हैं, सिंसियरिटी से मेहनत नहीं करना चाहते हैं, उस लक्ष्य के लिए त्याग करना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम अनेक कारण बता देते हैं, फिर हम अनेक कारण बता देते हैं। वरना संगम युग में हम कुमारियों को आदि से लेकर आज तक, और मैं समझती हूं अंत तक, हमें ये मौका है जो भगवान हमें स्पेशल सुविधा देकर अपने घर में रखकर हमें संपूर्ण बनाना चाहता है, है कि नहीं ऐसे? बेचारे गृहस्थी भी चाहते हैं और उस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, लेकिन उनको सुविधा नहीं है। कितना भी कहो लौकिक में रहना, दुनिया में रहना सहज नहीं है, उसे हर कदम पर संघर्ष। बाकी कॉमन है, वो भी सहन करते, हम भी सहन करते। अगर हम कहते हैं कि यहां ब्रह्मा कुमारी जीवन में ये बात है, वो बात है, फलानी बातें हैं, इसलिए हम नहीं बनना चाहते हैं, तो वो बातें जिसका वर्णन आप करते हैं, यहाँ ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, हम नहीं कर सकते हैं, हम नहीं इसमें चल सकते, वो बातें क्या लौकिक में नहीं है? लौकिक में नहीं है? आप घर में रहो, नौकरी करो, चाहे शादी करो, जीवन का कोई क्षेत्र नहीं है जहां ये बातें ना हो, जहां ये बातें ना। आप जहां नौकरी करो वहां भी पूछो जो नौकरी करने वाली बहनें, वहां अपने बॉस का, अपने साथियों का कितना एडजस्टमेंट करना होता है। इसलिए केवल एक बात मैं कहना चाहूंगी कि हमारे सामने अगर अनेक अल्टरनेट है, अनेक विकल्प है कि भी ये बनना भी ऊंचा है, ये बनना भी ऊंचा है, ये करना भी जरूरी है, ये करना भी ऊंचा है। अगर हमारे सामने अनेक अल्टरनेट है तो हम हरेक के आदि मध्य अंत को सोचे और उस अनेक में से जो श्रेष्ठतम है उसे चुने। वो श्रेष्ठतम लक्ष्य जीवन पद्धति ये कैसे हैं, वो सारी बातें मैंने आपको बताई और वो आपने चुन ली है। सबसे ऊंची बात ये है कि वो आपने चुन ली है। अब आवश्यक है कि हम पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे स्वाहा होने की तैयारी के साथ, पूरे लगकर उस चुने हुए लक्ष्य को सफल कर। बस हम ब्रह्मा कुमारी तो है ही, चलो समर्पित ब्रह्मा कुमारी हम बने ना बने, इसमें संस्था को कोई खोट नहीं जानी। हमारे जैसी सैकड़ों मिलती है, हमारे जैसी सैकड़ों मिल रही है, संस्था को कोई फर्क नहीं पड़ना। बाबा सर्वशक्तिमान है, उसको जो काम करना है वो तो कहीं से भी हैंड्स चुनेगा, है ना ऐसा। लेकिन खोट तो मुझे जाएगी, नुकसान तो मुझे होगा ना। इसलिए बाबा के बने ही हैं तो ढीले ढीले क्यों बने, टेढ़े मेढ़े क्यों बने, थोड़ा थोड़ा क्यों बने, एक पांव उसमें एक पांव इसमें क्यों ऐसे बने, किनारे किनारे क्यों चले, सहारे सहारे क्यों चले। बनना ही है तो धक से बने, पूरा बने और मर मिट जाए। हम तो इसी लक्ष्य से चले हैं और चल रहे। ओम शांति।